फिर आगे कुछ बातें शयातीन की आप मुसलसल पढ़ेंगे, शक, शुबे, डाउट्स और न जाने क्या क्या नेगेटिविटी इस्लाम और कुरान के बारे में लोगों के जहनों में डालना, इस बारे में इसका बहुत ज़्यादा आपको तذکرہ मिलेगा। वह यौम यक्षुरहुम जमीया, और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे, जिस रोज़ अल्लाह इन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, इस रोज़ वो जिन्नों से खिताब करेगा और फरमाएगा, ए गिरोह जिन, तुमने तो नौ इंसानी पर खुद खूब हाथ साफ किया, इंसानों में से जो इनके रफ़ीक थे वो अर्ज़ करेंगे, परवरदिगार हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया और अब हम उस वक्त पर आ पहुँचे जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा बाग तुम्हारा ठिकाना है, इसमें तुम हमेशा रहोगे, इससे बचेंगे सिर्फ वही माशाल्लाह जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। दुआ करें अल्लाह हमारे लिए भी ये फ़ैसला कर ले, तो हमें भी बचाने का इरादा कर ले, बेशक तुम्हारा रब दाना और हलीम है। देखो इस तरह हम आखरत में जालिमों को एक दूसरे का साथी बनाएंगे, इस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में एक दूसरे के साथ मिलकर करते थे। इस मौके पर अल्लाह इनसे ये भी पूछेगा, कह गिरोह जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम ही में से वो पैगंबर ना आए थे जो तुमको मेरी आयात सुनाते और उस दिन के बुरे अंजाम से डराते? वो कहेंगे, हाँ हम अपने खिलाफ़ खुद गवाही देते हैं। वहाँ जाकर देने का क्या फ़ायदा, इसलिए कि आज वो गवाही देने का वक्त था। वजह क्या थी दुनिया में खोने की? वग़र्रतहुमुल हयातु दुनिया, और धोखे में डाले रखा आज दुनिया की ज़िंदगी ने इन लोगों को, मगर इस वक्त वो खुद अपने खिलाफ़ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। ज़ालिका अल्लम यकुर रब्बुक मुहलिकल क़ुरा, ये शहादत इसलिए उनसे ली जाएगी कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला न था, जबकि इनके बाशिंदे हकीकत से ना वाकिफ़ हों। इसमें अल्लाह ताला का एक असूल है, ये नोट कर लीजिएगा, अल्लाह ताला ना वाकिफ़ और गाफिल लोगों को नहीं पकड़ता। मिसाल है, किसी तक हिदायत का पैगाम नहीं गया, किसी तक कोई उस्ताद नहीं पहुँचा, किसी ने किसी मदरसे का रुख नहीं किया, किसी को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली, किसी को पता ही कुछ नहीं, वो ख्वाहिशों में खो रहा है, अल्लाह ताला उसको कभी नहीं पकड़ते। पकड़ कब होती है, किसकी होती है? जो बंदा हिदायत के मौके का फ़ायदा ना उठाए, आंखें बंद कर ले, जान के भोला बना रहे, ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला कैसे पकड़ते हैं? ये अल्लाह ताला की पकड़ हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगली सूरत में उन कौमों का तस्करा है कि जिनके पास वक्त के नबी आए, रसूल आए, लेकिन लोग ना मान के ना माने। इसलिए आगे अगली आयत बड़ी खूबसूरत है, जो मुझे आपको बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करती है, बहुत मोटिवेशन देगी। वो क्या है? वलिकुल्लिन दरजात मिम्मा अमिलू, हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं, तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी इसका शेवा है। क्या पता चला, हर एक के दर्जे अमलों के एतबार से हैं। आज दुनिया में भी दर्जे हैं दौलत के एतबार से, कि वो बेचारे कखपति हैं कि लखपति हैं, या एक और बांट है दुनिया में, एजुकेटेड हैं कि नहीं हैं, हैव्स हैं या हैव नॉट्स हैं, लीड्स हैं या इन लीड्स हैं या कौन से हैं। आज दुनिया में हमने दूसरों को कई ऐसी चीज़ों के साथ अपने लिए बड़ा बना दिया, लेकिन अल्लाह के हाथ दर्जे किस चीज़ पे? अमल पे। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। आपको मुझे आज अपना रैंक सेट करना है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपका क्या मुकाम होना चाहिए, आप अपने आप को किन जगहों पर रखना चाहते हैं, ये आज आपको सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। बचपन में बच्चे अपनी लाइन सेट कर लेते हैं, किधर जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, और ज़रा मैं और आप यहाँ 3 सेकंड आंखें बंद करके ख़ुद से पूछें, मैं किस दर्जे पे हूँ? हदीस में आता है जन्नत के 100 दर्जे हैं। चलिए अगर जन्नत की सफ़ में खड़े भी हैं, पहली पे हूँ कि दूसरी पे हूँ कि 100वीं पे हूँ, और अगर अल्लाह की रज़ा के मुकाम को देखें तो कहाँ खड़ी हूँ, मेरा अल्लाह की नज़रों में क्या मुकाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में मेरा क्या मुकाम होगा कल। कितनी फ़िक्र की बात है, आज मुझे आपको अमल के लिए दौड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा लीजिए, ये नेकियों का महीना है, भागिए। या बागी अल खैरी अकबिल, ए खैर को चाहने वाले भाग भाग, क्योंकि आप देखिए जब इंसान एक अच्छा काम करता है ना, तो ख़ुद पर भी एहसान करता है और दूसरे को बाहर लग रहा होता है कि वो उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन वो फ़ायदा उसको खुद ही होता है। फिर एक और चीज़ याद रखिए कि आप जब एक नेकी करते हैं ना, ख़ुद ब खुद दूसरी नेकी को दिल करता है, जब दूसरी करेंगे ना उसके बाद तीसरी होगी, तीसरी नेकी के बाद चौथी नेकी का दिल करेगा, और आप एक दफ़ा ज़रा बैठिए हिम्मत छोड़ के, कुछ भी नहीं होगा। एक अल्लाह ताला का ये इनाम होता है कि नेकियों में से मज़ीद नेकियों के मौके मिल जाते हैं। तो आज मैंने आपने दौड़ना है, आज के दिन का गोल बनाइए, इस हफ्ते का गोल बनाइए, इस महीने का गोल बनाइए, और इस एक महीने को इस्तेमाल करके आप मैं एक साल को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि रमज़ान डिसाइड करता है नेक्स्ट ईयर हमारा कैसा होगा। वमा रब्बु कभी गाफिल अम्मा या मलून, अल्लाह को ख़बर है आप क्या नियतें करें, क्या इरादे करें। चुपके से कोई नेकी करें, आप देखिए कि इंसान कोई नेकी करे, फिर दिल चाहता है कि कोई पता चले किसी को, हाय किसी को पता नहीं चला, हाय मैं कैसे बताऊँ, बातों ही बातों में बताएंगे, अब तो तहज्जुद शुरू कर दी, अब तो ये भी हो गया वो हो गया, वो नेकियों को हवा लग जाती है। कभी अपनी नेकियों का चर्चा ना करें। जैसे अभी पकते चावलों का ढक्कन खोल देना तो दम नहीं सही चढ़ता, पौधा अभी उगा भी नहीं और आप उसकी मिट्टी हटा के देखें कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हो गई हैं, वो पौधा नहीं फलेगा। नेकियों के पौधे को हवा लग जाती है, इसको छुपाएं और अपना मुकाम नोट करके फिर ये कहना है कि अल्लाह ताला इससे अगला क्या लेना है। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, अल्लाह ताला आप देखिएगा आसानियाँ करता ही जाएगा। फिर फरमाया अगर वो चाहे तो युज़हिबकुम, तुमको ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए, जिस तरह इसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया। तुमसे जिस चीज़ का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है, और तुम अल्लाह को आजिज़ कर देने की ताकत नहीं रखते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि लोगों तुम अपनी जगह अमल करते रहो, मैं भी अपनी जगह अमल कर रहा हूँ, अन करीब तुमको मालूम हो जाएगा कि इंजामेकार किसके हक़ में बेहतर होता है। बहरहाल ये हकीकत है कि जालिम कभी फलाह नहीं पाते। दुआ कीजिए कोई अच्छी सी, कुछ भी जो दिल करता है मांगिए। आपको पता है कि कुरान पढ़ने के दौरान भी दुआएं कबूल होती हैं। हदीस में आता है कि जिसके कुरान पढ़ने ने उसको दुआ मांगने से रोके रखा, अल्लाह उसको मांगने वाले से ज़्यादा देता है। तो अगली आयत शुरू करती हूँ, आप दिल में कोई नियत कर लें दुआ की कि अल्लाह मांगनी तो दुआ थी पर पढ़ने कुरान लगी हूँ, आप मेरे लिए आसान कर दें। और अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। आगे फिर उनकी कुछ बिदात का तذکرہ, वो इफ्तरा परदाजियाँ जो रस्म व रिवाज के नाम पे, ख़ानदान और बिरादरी के नाम पे सदियों से कर रहे थे, और इसके बावजूद भी आप देखिए कि उन्होंने कभी ना सोचा कि ये बेकार किस्म की रस्में हैं, इसी का तذکرہ आपको यहाँ मिलेगा। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सि वल अनामि नसीबा, इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद इसी की पैदा की हुई खेती और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बताऊँगी फिर आप इस आयत को इंजॉय करेंगे। मक्का वाले चूँकि अल्लाह को मानते थे लेकिन साथ साथ दूसरों को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बांट कैसी रखी हुई थी। मिसाल है कि एक शख्स के तीन खेत हैं, यानी 1, 2 और 3। अब ये पहला हिस्सा कहते थे कि इसकी जितनी भी फसल आएगी ना हम अल्लाह के नाम कुर्बान करेंगे, अल्लाह के नाम करेंगे। याद रखिए कुर्बानियाँ वो भी करते थे। अच्छा, ये दूसरा हिस्सा क्या कहते थे, ये हम खुद खा लेंगे या ये हमारे अपने ज़ाती ज़रूरत के लिए। और ये जो तीसरा हिस्सा है ना, इसकी नजर जो भी फसल है ना, ये हम अपने बुतों और अपने बड़ों के नाम पे लगा देंगे। अपने तौर से कितना बैलेंस, वो कहते हैं ना यू शुड बी वेल बैलेंस्ड। आपका ख्याल है वो नेकी नहीं करते, वो बहुत चंदे देते हैं। क्या हुआ अगर कसीनों में भी चले जाते हैं तो क्या हुआ अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ते, क्या मस्जिदों में उन्होंने कारपेट नहीं बिछाए। यानी आज लोग इसको वेल बैलेंस्ड होना कहते हैं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्सर्ट करवा रहे हैं ना, लेकिन इसके पैसे तो हम सारे सीरिया ही भेजेंगे ना। यानी इस तरह की दोरंगी चाल थी कि अल्लाह को भी खुश रखो इनको रखो। चलिए इतनी भी बात काफ़ी थी, अब होता क्या, तीन हिस्से कर दिए, हम कहते इट्स ओके, कुछ तो करते हैं ना, अल्लाह के लिए भी तो करते हैं। अच्छा, अब एक साल क्या होता कि जो अल्लाह ताला का एक वाला प्लॉट था ना, उसकी फसल नहीं आती थी, बिजली कीड़ा पड़ गया, सुसरी पड़ गई, जो भी कह लीजिए। तो उस साल क्या करें, अब अल्लाह को क्या दें। कहते नहीं हुई तो हम क्या करें, फिर नहीं हुई तो कुछ नहीं देना अल्लाह के नाम। अब उस वक्त अल्लाह के नाम पे देना छोड़ देते। किसी साल जो बुतों के नाम की फसल थी उसमें कीड़ा पड़ जाता, तो भी अब भी तो यही बोलो ना कि होती तो देते, हुई नहीं तो नहीं देती। कहते ना 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 ना, वो लात और उज्जा और वो फलां फलां हमारे बड़े नाराज़ हो जाएंगे, उनकी न्याज ना दी, अगर उनको राज़ी ना किया मुश्किल होगा। अब क्या करें, उस साल इस तरफ का प्रॉफिट पकड़ के जाके बुतों के नाम दे देते। खुद साख्ता बातें। अच्छा, देखने में बेवकूफ़ी लग रही है ना, आज हम क्या करते हैं अक्सर, इल्ला माशाल्लाह अच्छे दिन है ये अल्लाह के रास्ते में दूंगी, ये वो करूंगी, ये करूंगी, जॉब चली गई, सबसे पहले अल्लाह का हिस्सा खींचते हैं, अच्छा खासा अल्लाह के दीन पे लगा रहे होते हैं, अच्छा खासा इस्लाम पे लगाते हैं, अपने सीखने सिखाने पे, अपने बच्चों पे लगाते हैं, ज़र्रा सी कहीं कमी बेशी आई सबसे पहले अल्लाह का हिस्सा निकलता है। नमाज़ें अच्छी खासी पढ़ रहे होते हैं, एक मेहमान छोटा सा भी आ जाए ना घर में तो नमाज लेट होती है, अल्लाह का हिस्सा पकड़ के मेहमान को दे देते हैं। वक्त, सोचें, टैलेंट, हम कैसे बांटे हुए आज दुनिया के साथ, इसको जहन में रख के ज़रा इस आयत को सुनिएगा। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्स, इन लोगों ने अल्लाह के लिए खुद इसी की पैदा की हुई खेतियों और मवेशियों में से एक हिस्सा मुकर्रर किया है और कहते हैं ये अल्लाह के लिए अपने ज़ोम के मुताबिक, और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों के लिए। फिर जो हिस्सा इनके ठहराए हुए शरीकों के लिए है वो अल्लाह को नहीं पहुंचता, मगर जो अल्लाह के लिए वो इनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसे बुरे फैसले करते हैं ये लोग। इसी तरह बहुत से मुशरिकों के लिए इनके शरीकों ने अपनी औलाद के कत्ल को खुशनुमा बना दिया ताकि इनको हलाकत में मुबतला करें और इन पर इनके दीन को शुबे वाला कर दें। फिर आ गई ये शक और शुबे की बात, अपने बच्चों को बुतों की भेंट चढ़ाते थे। बाज़ दफ़ा 10 में से एक बेटा पकड़ के अल्लाह के रास्ते में देने की बजाय बुत के नाम पर दे दो। आपको याद होगा अल्लाह के नबी सल्लम के बाप अब्दुल्ला के बारे में ये वाक्या मारूफ है कि उन्होंने मन्नत मानी भी थी, उनके बारे में मन्नत मानी भी थी कि उनके बाप की तरफ से कि अगर मेरा एक और बेटा हुआ तो मैं एक को ज़िबा करूँगा, और हर दफ़ा अब्दुल्ला का ही नाम आ रहा था। तफसीली वाक्या जो इस वक्त जिक्र किया सिर्फ इशारतन, लेकिन आप देखिए अरबों में ये आम था, भेंट चढ़ाने का जिक्र था। इवन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर तक ये बात रही कि मिस्र में जब इस्लाम पहुंचा और उसके इर्द गिर्द ईरान, इराक़ और इधर उधर गए तो लोग हर साल दरिया की खुश्की को दूर करने के लिए एक खूबसूरत औरत को उसके अंदर फेंकते थे और कहते थे कि हम फलां को राज़ी करने के लिए तुझे भेजते हैं, तो ऐ दरिया तू हमसे राज़ी हो जा, और फिर उसके ऊपर पानी आ भी जाता था। ये एक ख्याल है ना, जैसा आप सोचें। तो जब हज़रत उमर ने वो इलाका फ़तह किया तो लोगों ने उन्हें कहा कि जब तक आप इधर भेंट नहीं चढ़ाएँगे यानी कुर्बानी नहीं करवाएँगे किसी की, पानी आएगा नहीं। तो हज़रत उमर ने क्या किया, एक ख़त लिखा कागज़ पे, ऐ दरिया तू भी उसका ही बंदा है जिसका मैं बंदा हूँ, तूने बहना है तो अल्लाह के हुक्म से बह, नहीं बहना तो ना बह, और वो पर्ची डाल दी उन्होंने दरिया में, पानी आ गया। आपके मेरे अकीदे की जंग है, जैसे जो सोचेंगे जिस तरह सचाहेंगे अल्लाह वैसे ही करेगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये अपनी मर्ज़ी से ऐसे काम करते हैं, छोड़ दीजिए इनको इनके हाल पे। कहते हैं कि ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, अगर अल्लाह चाहता तो ये ऐसा ना करते इन्हें, लिहाजा इनको छोड़ दो कि अपनी झूठ बोलने में लगे रहें। ये जानवर और ये खेत महफूज हैं, इन्हें सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिन्हें हम खिलाना चाहें, हालांकि ये पाबंदी इनकी खुद साख्ता है। फिर कुछ जानवर है जिन पर सवारी और बोझ लादना हराम कर दिया गया है, और कुछ जानवर है जिन पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, और ये सब कुछ उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा, अन करीब अल्लाह इनको इस झूठ बांधने का बदला देगा। आगे देखिए बड़ी मज़े की इनकी एक बिदत है, यानी आपको शायद तर्जुमे से इतनी जल्दी वाजे ना हो। जानवर के पेट में जो मादा जानवर होती थी ना उसके पेट के बच्चे की अब बातें हो रही हैं। अगर जानवर को ज़िबा करते हैं, मतलब बकरी है उसको ज़िबा किया तो उसमें से एक बच्चा भी निकल आया, अच्छा अगर वो बच्चा ज़िंदा निकलता ना तो कहते ये हमारे मर्द खाएंगे, और अगर वो बच्चा मुर्दा होता कहते और तो तुम खा लो। यानी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन थी, और आज भी वही जो पीछे जिक्र हुआ था कि कुंडों के नाम पे आता है कि ये औरतें ही खाएंगी और वो मर्द नहीं खाएंगे और ये प्रेग्नेंट नहीं खाएगी। एक औरत की बात है जिसको मैंने बहुत क्लोज से भी देखा कि वो कहती हैं कि मेरे पीर साहब जब आते हैं ना तो सुबह फजर से पहले मैं बिल्कुल पूरा गुसल करती हूँ जैसे वाकई पाकी का गुसल करते हैं, फिर मैं खड़े होकर पीर साहब के लिए करेले पकाती हूँ और दही बड़े बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि पीर साहब को शुगर है, तो पीर साहब अपनी शुगर तो ठीक नहीं कर सके। यानी अपने मियाँ के लिए इतने तपाक से नाश्ता बनाया ना हो, पीर साहब के लिए इतने प्यार और तपाक से लोग खाने बनाते हैं। और अल्लाह ताला हिदायत दे बस सबको, इससे ज़्यादा आपको और क्या सुनाऊँ कि और लोग क्या कुछ करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वक़ालु माफ़ी बतू निहाज़िल नामी खालिसतुल्लिज़ुकूरीना, और कहते हैं जो कुछ इन जानवरों के पेट में है ये हमारे मर्दों के लिए ख़ास है और हमारी औरतों पर हराम है, लेकिन अगर वो मुर्दा हो तो दोनों इसके खाने में शरीक हो सकते हैं। ये बातें जिन्होंने घड़ ली है इनका बदला इनको अल्लाह दे कर रहेगा, यकीनन वो हकीम और सब बातों की उसे खबर है। अब यहाँ फिर वो ये असूल सोचें, क्या हर्ज है, किसका दिल टूटा, क्या नुकसान है। देखिए ये हैं वो किसी भी सोसाइटी की रस्में जो फैली होती हैं, अकल भी नहीं है। अब आप सोचिए ना कि एक लड़की शादी होके गई किसी के घर में, अब सब मौजूद हैं और आप जाकर उसके पास उसका देवर जो कद में उससे भी कोई एक फुट लंबा होगा उसको उसकी गोद में बिठा देते हैं, क्या जी ये देवर साहब गोद बैठे हैं, आप इनको पैसे देंगे तो ये उठेंगे। होती है ये रस्म किसी के गांव में? आम है, पंजाब की शादियों में साली दूध पिलाती है और देवर की घुटने गोडा बिठाई होती है, और जब शादी के बाद दूल्हा साहब जाते हैं तो बहनोई की जूतियाँ छुपा ली जाती हैं। कभी आप सोचे आप यहाँ आए हैं वापसी पे हम आपकी जूतियाँ छुपा लें, कितनी बुरी बात है। घर आए मेहमान की जूती छुपानी और फिर पैसे लेके देनी। सालियाँ जो कंवारी जो अनमैरिड जिनसे अल्लाह के नबी ने कैसे एक पर्दे की हदें बताई, उसको कहा कि जब तक दूध पिलाई नहीं देंगे नहीं होगा। अब आप सोचे जब हम ये रस्में कर रहे होते हैं कभी हमने सोचा? और वो एक इतना बड़ा दूल्हा जो जवान है उसको सारे ख़ानदान की औरतें मेहंदी वाले दिन मिठाइयाँ खिला रही हैं और उसको मेहंदियाँ लगा रही हैं और उसके बालों में तेल लगा रही हैं, कभी इस्लाम के आईने से देखिए तो हाथ नहीं कांप जाते? हदीस में थे कि एक गैर महरम को हाथ छुए एक औरत का या मर्द का औरत को तो ये अंगारा जलने के बराबर है। हम इसको कहते इट्स ओके। तो याद रखिए जो रस्में होती हैं ना इनके पीछे बंदे की मत मरी जाती है, सोच ही ख़त्म हो जाती है। ये तो अभी मैंने चार छः बताई हैं, आप अगर ज़रा शादी की सारी रस्में देखें, कई कल्चर हैं वो जब दुल्हन आती है तो दरवाजे पे तेल डालते हैं, कई जो हैं वो नारियल फोड़ते हैं, कुछ जगह ऐसी हैं कि शादी के वक्त दुल्हन जो है अपने घर से जाती है तो चावल लेकर तो हाथ में लेके ना तो उसको बालों से सर से पीछे फेंकती हैं। ये क्या कहते हैं, अब पीछे मैके वालों का रिज़्क खुला रहेगा, यानी ये अगर ऐसे ना किया तो इस लड़की के जाते इस घर में फाके पड़ जाएंगे। आप ज़रा सोचिए, अक्ल इस बात को मानती है लेकिन रस्मों के नाम पे इसी तरह लोग बेवकूफ़ काम करते हैं। और जब कोई कहे तो कहते ना 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 ना, ये दादी की रस्म है, इसको नहीं छोड़ना, ये अम्मा की रूह को बड़ा तकलीफ़ होगी अगर आपने ये छोड़ा। आप जो जो खाने बना लेती हैं पहले आपकी नानियाँ दादियाँ वो नहीं पकाती थी? तो हमेशा दीन के मामले में ख़ास तौर पे अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए। किसी काम को करते हुए उसकी रीज़न देखिए। अल्लाह के नबी ने किया, अबू बकर ने किया, हज़रत आयशा ये करती थी, हज़रत खदीजा होती तो ये कपड़े पहन के निकलती, हज़रत आयशा होती तो इस रूप में निकलती, हज़रत मरियम ऐसी होती तो क्या वो मर्दों से ऐसे बात करती? सिंपल सी बात है, मेरे आपके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ना हमें बोलने की ज़रूरत है। तो ये बेकार किस्म की उनकी रस्में, अल्लाह ताला कहते हैं ये बातें इन्होंने घड़ ली थी, इनका बदला अल्लाह ताला इनको देकर रहेगा, यकीनन वो हकीम है और इन सब बातों और सब बातों की से खबर हो जाती है। यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को जहालत और नदानी की बिना पर कत्ल किया। ये दूसरी दफ़ा ये बात आई है, इंशाल्लाह आगे भी आएगी ये सूरत बनी इसराइल में, आपको दिखाएंगे कि मक्का वाले किस तरह से औलाद को कत्ल करते थे और आज के इस माशरे में लोग किस तरह एबॉर्शन के नाम पर अपने ही बच्चों को ज़िबा कर देते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिस्क को अल्लाह पर झूठ बांधते हुए हराम ठहरा लेते थे। यकीनन वो भटक गए, वमा कानू मुफ्तदीन, और वो हरगिस राह रास पाने वालों में नहीं। वहुवल्लज़ी अंशा जन्नात मारूशात वगैर मारूशात, वो अल्लाह ही है जिसने तरह तरह के बाग और ताकिस्तान और नखलिस्तान पैदा किए, खेतियाँ उगाई जिनसे किस्म किस्म के खाने की चीज़ें हासिल करते हैं, जैतून और अनार के दरख्त पैदा किए जिनके फल सूरत में एक दूसरे से मिलते और मज़े में मुख्तलिफ होते हैं, खाओ इनकी पैदावार जबकि फलें और अल्लाह का हक अदा करो, और जब इनकी फसल काटो और हद से न गुजरो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। अब देखिए कि यहाँ फलों के पकने की बात है, इस पर बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन भी है और इसकी तफसीर जब हम डिटेल से करते हैं तो इसमें इसके फल के पकने को और ईमान के पकने को रिलेट किया जाता है, और हकीकत भी यही है। आप देखिए कि एक बीज से फल शुरू होता है, फिर बीज से पौधा, पौधे से दरख्त बनता है, दरख्त का फिर बीज बनता है, फिर उससे माल्टा या ऑरेंज या कुछ भी बनता है। ये सारा मंजर देखकर एक इंसान को इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह ज़िंदा है और एक अल्हई है जो सबको लेके चल रहा है। इसी तरह याद रखिए कि वो एक दिन ही होता है जिस दिन हमारे दिल में ईमान का बीज डल जाता है। शायद आज का ही दिन हमारे आपके दिलों में ईमान का बीज डालने वाला दिन हो। जब ये वक्त आ जाता है ना, इसकी कदर करनी चाहिए। जो किसान बीज डालने के वक्त पे सोया रहे, बैठा रहे और उस वक्त सुस्त होकर बैठ जाए तो फसल काटने के दिन वो महरूम होगा। मुझे ऐसे लगता है कि रमज़ान का महीना बीज डालने का महीना होता है। जो नेकी का बीज डालना डालें, आज घर जाके बैठ के सोचिए मुझे अपनी कौन कौन सी आदतें बुरी लगती हैं, मैं क्या क्या छोड़ना चाहती हूँ, लिस्ट बना लें और हर दिन रोज़ा खोलते हुए इफ्तारी में सहरी में जब भी आप फोकस्ड हों अल्लाह से कह अल्लाह ताला आज मेरी ये बुराई छुटवा दे। मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो दुआएं ना हमारी औलाद दे दे, माल दे दे, घर दे दे, ये तो आम दुआएं हैं, ये कबूल हो भी जाती हैं, कभी हमें पता चलता है कभी नहीं। आप कोई अनयूजुअल दुआ मांगे अल्लाह से, अल्लाह मुझे सूरत याद हो जाए, अल्लाह ताला मेरा हाफ़ज़ा खोल दे, अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान की गिरें खोल दे, अल्लाह मेरे दिल से खौफ निकाल दे, झिझक दूर कर दे, आपकी बुरी हो जाएगी। शर्त ये कि आप उस चीज़ को करने के लिए बहुत संजीदा हों। फिर इसके बाद कुछ और उन लोगों की बातें जिसका तस्करा आगे आ रहा है। फिर वही है जिसने मवेशियों में से वो जानवर पैदा किए जिन पर सवारी और बार बर्दारी का काम लिया जाता है, और वो भी जो खाने और बिछाने के काम आते हैं, खाओ इन चीज़ों में से जो अल्लाह ने तुमको बख्शी है, और शैतान की पैरवी ना करो क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये 8 नर और मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरी की किस्म से। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछो। देखिए अब अल्लाह के नबी जब इन बातों पे तनकीद करते थे ना, तो हो सकता है ये उस वक्त नबी सल्लम को वहाबी ही कह देते हों, हालांकि किताबों में आता है कि साबी कहते थे। जब अल्लाह के नबी मक्का वालों की इन रस्मों पर तनकीद करते कि भाई लोगों ये क्या करते हो, कहते थे नऊज़ बिल्ला ये साबी हो गया। आज लोग वहाबी कहते हैं, कल साबी कहते थे। ना साबी कोई लफ्ज़ था ना वहाबी कोई लफ्ज़ है। अल्लाह ताला कहते हैं जाके ज़रा इनसे पूछो, यानी दलील मांगो। यहाँ से आपको ये भी पता चला कि जब भी किसी को कोई रस्म कोई काम ऐसा करते देखे तो उसे के रेफरेंस दिखाइए, हदीस दिखाइए, कुरान की आयत दिखाइए। तो अल्लाह कहते हैं जाके इनसे पूछो कि अल्लाह ने इनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझको बताओ अगर तुम सच्चे हो। और इसी तरह 2 ऊँट की किस्म से और 2 गाय की किस्म से पूछो, इनके नर अल्लाह ने हराम किए या मादा, या वो बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हो, क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने इनके हराम होने का हुक्म तुमको दिया। असल में ये डांट है, अल्लाह ने हुक्म तो दिया ही कोई नहीं था, तुम रेफरेंस दे दो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। फिर इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता।